तो आप चलें थोड़ा सा सूरह तौबा पे, देखिएगा खसूसियात पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें जो हमने कर दी हैं अब उसी का अंदर से खुलासा। खसूसियात क्या है, यानी खास बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पहली बात, मदीना मुनव्वरा में वफात से पहले 9 और 10 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 सूरतें नाजिल हुई। देखिए ये भी बड़ी अहम बात है, कब कौन सी सूरत शुरू हुई। तो अब देखिए सूरह बय्यिना, सूरह तौबा और सूरह नसर। क्या आपको ये बात पहले पता थी कि ये 3 सूरतें एक ही टाइम मेरा में नबी सल्लम पर नाजिल हुई हैं। चुनाचे सूरह तौबा नजूली आ तरतीब के एतबार से सबसे बड़ी आखिरी मदनी सूरत है। मुझे बताइए ये जेम आपको कहाँ से मिलना था अगर आप ये बुक ना खोलते। ये बुक के बारे में भी मेरा गुमान यही था कि ये बड़ी बोरिंग लगेगी लोगों को, बहुत ही एनरिच्ड है, जब तक कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लेवर माइंड के साथ आप ना बैठें। लेकिन आप देखें अब ये जुमला, अब आपने तो इस जुमले को पढ़ लिया और मेरे सामने सूरह बय्यिना खुल गई है। अभी जो लास्ट सूरह बय्यिना तफसीर से मैंने कराई ना, वो मैंने तदब्बुरुल कुरान में कराई है। और उस दिन मैं जोहराबाद में एक मेडिकल कॉलेज का जो उनका कॉन्फ्रेंस रूम था उसमें बैठी थी, और मेरे आगे जो हमारे अपनी टीम के कुछ लोग थे जो साथ अंसारुल्ला जाते थे और बाकी डॉक्टर्स थी। मैं अपने दिल से बता सकती हूँ कि मुझे उस दिन सूरह बय्यिना की जो बात समझ आई, मैंने अल्लाह के हुक्म से 20 दफ़ा पढ़ाया होगा, मुझे वो नहीं समझ आई थी। आप भी सुनिए, मेरी इस बात को लिख लें, घर जाकर आज से 1 घंटा, टोटल 1 घंटा सूरह बय्यिना की तफसीर है, तदब्बुरुल कुरान यूट्यूब पे लिख लीजिए, जाके वहां सुन के आइएगा। मैं खुद उस दिन हैरान थी, डर गए थे हम, आप भी सुनेंगे आप भी डरेंगे कि नबी बय्यिना कैसे है। असल में बय्यिना अल्लाह के नबी हैं। क्या आपके आने से पहले बड़े लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, उसमें वलीद बिन मुगीरा भी था, अबू बकर भी थे, पर नबी आकर एक दलील बन गए कि वलीद बिन मुगीरा अंदर से खोटा है, इसलिए उसकी वो जाहिरी नेकियां काम नहीं आई, लेकिन अबू बकर पहले भी अच्छे थे बाद में भी अच्छे। लेकिन ऑपोजिट भी था, अबू जहल भी माशरे में एक बहुत ही गलत किरदार था, और अब उमर फारूक भी थे, लेकिन नबी बय्यिना बने कि उमर का समझ आ गया, नहीं ये ऊपर ऊपर से माहौल ने इसको खराब कर दिया था, अंदर से ही अच्छा बंदा था, लेकिन अबू जहल अंदर से कोटा था। तो नबी का वजूद बय्यिना होता है। किसी भी जगह बहुत सारे लोग नेकियों के काम कर रहे होते हैं, और आज की बय्यिना क्या है, मुझे फिर कुरान की एक और आयत याद आ रही है, आज की बय्यिना ये कुरान है। आम तौर पे बहुत नेकियां करते हैं, चलती फिरती घूमती फिरती, बट कुरान खुलता है तो कई लोग छट जाते हैं, बिल्कुल बेचारे नीचे पड़े हुए लोग सामने आ जाते हैं, उनमें इतनी खैर आती है, और कई बाहर दुनिया में अकल और कह लीजिए कि तकब्बुर के भरे हुए हैं, वो पीछे दूसरे एज पे चले जाते हैं, क्योंकि कुरान आपका मेरा असल खोलता है, मैं अंदर से क्या हूँ, मेरे अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो बहरहाल ये 3 सूरतों का मजमून नबी सल्लम की ज़ात है, सूरह तौबा और नसर। नसर क्या थी आखिरी आपकी ज़िंदगी में, क्या है उसकी आयत याद है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत वरअयतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। तो फिर क्या पता चला कि सूरह तौबा तवील सूरत है जो कि आपकी ज़िंदगी के आखिरी दौर में नाजिल हुई। दूसरी बात, सूरह तौबा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती, जिससे दो बातें साबित होती हैं। पहली बात ये कि ये कुरान आज भी उसी तरह महफूज है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे लिखवाया था। दूसरी बात, पिछली सूरत अल अनफाल में जिहाद के आदाब, फजाइल और फवायद और अहकाम में सुलह व जंग बयान किए गए, याद हैं ये सारे लफ्ज़। और सूरत तौबा में अमलन मुशरिकीन बनी इस्माइल, अहले किताब और मुनाफिकीन तीनों से जिहाद का हुक्म दिया गया। दोनों सूरतें मानवी एतबार से मरबूत, मरबूत क्या है, रब्त है उनमें, कंटिन्यू करती हैं, और दोनों जिहाद से मुतल्लिक हैं, इसलिए बिस्मिल्लाह भी नहीं लिखी गई। बात वाज है, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, यानी आप कह सकते हैं कि सूरत अल अनफाल थेरी है, थियोरेटिकली जिहाद को बयान किया गया, और सूरत तौबा में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जिहाद कैसे करना है। पिछली और अगली सूरत से सूरत तौबा का रब्त देखिए, जिसको क्या बोलते हैं, सब मिलके बोले, किताबी रब्त। पिछली सूरत यानी अल अनफाल में फ़लसफ़े जिहाद, तरगीबे जिहाद, आदाब जिहाद का जिक्र था, यहाँ सूरत तौबा में इन तीनों गिरोहों मुशरिकीन, अहले किताब और मुनाफिकीन का जिक्र किया गया, जिनसे अमलन जिहाद करना होगा। अगली सूरत यूनुस, अब आप ज़रा सोचिए, मैं अपने दिल से पहले सोचूंगी आगे देखे बगैर, आप भी सोचें, ये तो हम सब आंखें बंद करके कहते हैं सूरह अनफाल और तौबा का एक ही मजमून है, लेकिन सूरह यूनुस तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हर सूरत का पिछली से भी जोड़िए, जैसे चेन में चेन है, तो अब सूरह यूनुस से इसका क्या रब्त होगा, ज़रा सोचें आप खुद। अगली सूरत यूनुस में जिहाद से पहले जिहाद की शरायत का जिक्र है, और वो क्या है, तौहीद, रिसालत, आखरत पर कामिल ईमान के बगैर जिहाद मुमकिन नहीं है। چنانچہ محکم دلائل کے ساتھ مجادلہ کیا گیا. یعنی جب تک آپ کو ایک اللہ کے ہونے کا یقین نہیں ہے, نبی کے رسول ہونے پہ اور آخرت پر ایمان کا یقین نہیں, آپ جہاد کر ہی نہیں سکتے. یہ تلواریں اٹھانی دور کی بات ہے, قلم بھی نہیں اٹھتے. یہ جواب ہے اس بات کا کہ آج بہت ساری فضیلتوں کا پتہ ہونے کے باوجود کتنے لوگ قرآن سیکھنے آتے ہیں, کیونکہ ابھی وہ اجر کی امید نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ جانتا ہوں ثواب زہد لیکن طبیعت ادھر نہیں آتی. مجھے پتہ ہے زہد میں بڑا ہی ثواب ہے, پر میرا بھی دل ہی نہیں کر رہا کہ میں زاہد بنوں. تو آج کتنے لوگ ہیں جو نیکیوں کے موقع سے پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ یقین نہیں ہے. صحابہ میں اصل میں یہ تین چیزیں ٹھکی ہوئی تھیں, توحید, رسالت اور آخرت. آج بھی آپ کسی کے عمل میں کمی دیکھیں گے نا, ان تین میں سے کمی ہے. اور یہ اللہ کو منہ نہیں دکھانا, وہ خیر ہے جی اللہ اپنا, بھئی یہ کیا کر رہے ہو, نبی نے ایسے کیا تھا, اوہ نبی دی کیڑی گال لے جی, اسی پھر دنیا چ نہیں رہنا, یہ ٹون ہے. دیٹ مین آپ کو ابھی اللہ اور رسول کا مقام نہیں پتا. کس کی بات پہ آپ کان دھرتے ہیں, جس کو عزت دیتے ہیں, جس کا آپ کے دل میں ٹرسٹ ہے. اور لکھ لیں یہ بات, جس انسان کی آپ کے دل میں عزت نہیں ہے آپ اسے فائدہ نہیں لے سکتے, جس کتاب کی آپ کے دل میں عزت نہیں ہے آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, جس جگہ سے آپ کو عزت نہیں ہے آپ اس جگہ سے فائدہ نہیں لیتے. تو ضرورت ہے پھر اس کو پختہ کرنے کی. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا رب. چلیے, اہم کلیدی الفاظ اور مضامین, یعنی سورت میں کیا چیزیں ہیں جو چابی کی حیثیت رکھتی ہیں. پہلی چیز, سورت توبہ میں مشرکین کے خلاف فرد جرم اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات. فرد جرم کیا ہوتی ہے؟ کورٹ میں کسی کے اوپر جو الزام تراشیاں ہوتی ہیں اس کو فرد جرم کہتے ہیں, پھر اسی کے اوپر سارا مقدمہ چلتا ہے. پہلی بات, مشرکین مکہ کی صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی پر اللہ رسول کی طرف سے اظہار بیزاری کیا گیا. برات من اللہ و رسولہ للذین آخذت من المشرکین, پہلی ہی آیت ہے. برات من اللہ و رسولہ, اللہ اور رسول کی طرف سے بیزاری ہے. للذین, ان لوگوں سے, کون, آہدت من المشرکین, تم نے عہد باندھے ان میں سے مشرکوں کے ساتھ, یعنی جن مشرکوں سے تمہارے عہد تھے اللہ اور رسول ان سے بیزار ہے. پہلی آیت. مشرکین مکہ کو 9 ہجری میں 4 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا. وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, یعنی اذانم, پکار ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, الناس, لوگوں کی طرف, یوم الحج الاکبری, یوم حج اکبر کے دن. یہ جملے کس سے کہلوائے گئے تھے؟ ابو بکر صدیق سے کہلوائے گئے تھے. کیا؟ ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ, کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اور 9 ہجری یہ کون سا تھا؟ مکہ کے فتح ہونے کے بعد اگلا سال ذوالحج کا مہینہ جب آیا, یعنی حج کے موقع پہ یہ جملے بولے گئے. جن مشرکین نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی, ان سے مدت معاہدات تک عہد نبھانے کی ہدایت کی گئی. یہ خارجہ پالیسی ہے. فورن پالیسیز آف اسلام کیا تھیں؟ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. یعنی بات واضح ہو گئی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ معاہدے تھے, مہلت تو دی گئی 4 مہینے کی, لیکن کچھ کے ساتھ مہلت چل رہی تھی تو کہا کوئی بات نہیں, جن کی مہلت چل رہی ہے وہ ان کو اتنا وقت دے دو. یہ بھی اسلام کا کتنا خوبصورت ایک انداز ہے کہ ایک دم دھڑ ساڑ جا کر فیصلے نہیں سناتا. کہا جنہوں نے معاہدے توڑے نہیں, جنہوں نے تمہارے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کی. اب میں یہ مشکل جملہ نا اس کو دیکھے اردو میں پڑھتی ہوں بغیر عربی کیے, مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیے مشرکوں میں سے, پھر انہوں نے نہ تو اس میں کوئی کمی کی اور نہ تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی, بس تم ان کے معاہدے ان سے اس مدت تک پورے کرو. تو کیا پتا چلا کہ جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے رکھے, مثلا آپ کسی غیر مسلم سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں, اپنا گھر کرائے پہ دیتے ہیں, اگر وہ تمہیں کرایہ دے رہا ہے, گھر کو خراب نہیں کر رہا, تو گو ہیڈ, کیپ اٹ, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ مراد ہے ادھر. چوتھا دیکھیے گا, مشرکین کو وارننگ دی گئی کہ انہیں 4 مہینے کے بعد گرفتار اور قتل کیا جائے گا, البتہ وہ اسلام قبول کر کے نماز اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کے خلاف جنگی کاروائی روکی جا سکتی ہے. کیا؟ فَإِذَن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَاتِ وَالزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. تو کیا پتا چلا کہ جو لوگ ابھی اس کے بعد بھی اپنے آپ کو اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ان کو موقع دو. پھر اگلی بات دیکھیے, پانچویں, مشرکین اور غیر مسلم اگر اسلامی ریاست کا تعلیمی ویزا, تعلیمی ویزا کیا, ایجوکیشنل ویزا, یعنی وہ کہتے ہیں ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں, लेकर दीन इस्लाम सीखने के लिए आएंगे तो इनकी हिफाजत की जाएगी और वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इनको बखरियत अपने घर लौटने की सहूलतें फ्राहम की जाएंगी। उस दौर में लोग मस्जिद नबवी और मदीना में आया करते थे दीन सीखने, तो कहा कि वैसे मुशरिकीन को आने की इजाज़त नहीं, लेकिन कोई कहता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन इस्लाम, आई एम लर्निंग अबाउट इस्लाम, मुझे थोड़ा मौका दें, तो फिर जितना वक्त मर्जी वो लगाए, ठीक है। ये कहाँ लिखे है, वही नाहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारा का फाजिर हु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाही सुम्मा अबलिहु मा मनहु, यानी अगर कोई एक मुशरिकीन में से तलब करे आपसे पनाह ताकि सुने अल्लाह का कलाम, तो उसको उस मौका दो यहाँ तक के बाद में उसको उसकी अमन की जगह पर पहुँचा दो। तो इससे क्या पता चलता है, मुशरिकों को भी इस्लाम सिखाने का मौका देता है। आज हम कैसे इस्लाम के नाम पर लोग के दरवाजे बंद कर देते हैं, अल्लाह ताला हमें इस सुन्नत पे भी अमल करने की तौफीक दे। तब्दीली आएगी यस्मा कलाम अल्लाह से, अल्लाह करे कि लोग इसको सुने। फिर आगे देखिए, मुशरिकीन अगर सीधे रहें तो इनसे अच्छे ताल्लुकात रखे जा सकते हैं, लेकिन यह है चिकन लोग हैं। कैफ यकून लिल मुशरिकीन अहदुन इंद अल्लाही व इंद रसूलिही इल्ला अल्लज़ीना अहदतुम इंद अल मस्जिदिल हरामी फमस्तकामू लकुम फस्तकीमू लहुम, आयत 7। कैसे हो सकता है उन मुशरिकों से अहद अल्लाह और उसके रसूल के हाँ, सिवाय उन लोगों के जिनसे तुमने अहद किया मस्जिद हराम के करीब, बस जब वो सीधे रहे तुमसे तो तुम भी उनसे सीधे रहो, यानी जो तुम्हें सताता नहीं है तुम भी उसको न सताओ। फिर देखिए, मुशरिकीन को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो मसाजिद की तामीर करें जबकि वो अपने खिलाफ खुद कुफर के गवाह हैं, यानी कुफरी और शिरकिया माल के साथ मस्जिदों की देखभाल नहीं हो सकती। मा काना लिल मुशरिकीन यामुरु मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफर, यानी खुद कुफर पे हैं तो वो अल्लाह के घरों को बात करें, ये तो मुमकिन नहीं, आयत 17। तो क्या पता चला कि फिर ऐसी जगहों पे काम करने वाले या ऐसी जगह मस्जिदें और जो भी दीनी इदारे हैं उन लोगों को शिर्क से और बिदत से पाक होना चाहिए, ये मुराद है। मुशरिकीन एतिकादी तौर पर नजस और गंदे होते हैं, इसलिए इन्हें हदूद हरम में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इन्नमल मुशरिकून नजस फला यकरबुल मस्जिद अल हराम बाद आमिहिम हाजा, ये है हतमी हुक्म, यानी इस एक आयत पे आज भी अमल हो रहा है। आप कह लें 1400 साल हो गए इस आयत को आए हुए और इस पे अमल है, इसकी वजह से आज सऊदी हुकूमत है या कोई बड़े से बड़ा भी है, वो अपने किसी प्यारे मन चले दोस्त को मक्का और मदीना की हरम की हद में नहीं बुला सका। फिर मुशरिकीन की नागवारी के बावजूद अल्लाह ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि वो सब पर गालिब आ जाए। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलखुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही वलव करिहल मुशरिकून, आयत 33। मैं आपसे पूछ सकती हूँ ये आयत कुरान में कितनी दफ़ा है, कोई भी जवाब दे दे, इसका आखिरी लफ्ज़ फ़र्क है बस, लव करिहल मुशरिकून है, दूसरी जगह वलव करिहल काफिरून है। जी कितनी जगह है कुरान में, 3 दफ़ा, ये सूरत तौबा, सूरत सौफ़, सूरत फ़त्ह। और ये है इस्लाम का मिजाज, इस पे तो इतने लेक्चर्स भी हैं, वाकई सुनने के लायक आयतें हैं कि दीन इस्लाम गालिब रहने वाला दीन है, बातिल नहीं। और मैं इस आयत को पढ़ती हूँ तो मुझे एक मिसाल याद आती है, आपको भी दे देती हूँ। लस्सी बलोए तो मक्खन कहाँ रहता है, आप इसको हाथ से नीचे करें, ये है इस्लाम, मक्खन है इस्लाम, जो दबाता है, वो कहते हैं ना इस्लाम जिंदा होता है हर जुल्म के बाद, इस्लाम को जिसने दबाया प्रेस किया इस्लाम उतना उभर आएगा, अल्लाह ताला हमें इसका यकीन दिला दे। फिर देखिए, मुशरिकीन जिस तरह इत्तेहादी कुव्वतों के साथ मुत्तहिद होकर जंग करते हैं, मुसलमानों को भी इनसे इसी तरह मुत्तहिद होकर जंग करना चाहिए। वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, आयत 36। कत्तला, ता पे जज़्म होगी तो कत्ल मर्डर है, और का पे ज़बर ज़ेर या पेश कुछ भी आए तो मुराद है लड़ना, और लड़ो मुशरिकों से मिलकर, काफा सब मिलकर, जैसे वो तुमसे लड़ते हैं मिलकर, ठीक है। 36 आयत है। फिर किसी नबी और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो मुशरिकीन की मौत पर दुआए मगफरत करे चाहे वो इसके करीबी अजीज़ ही क्यों ना हो। मा काना लिन नबी वल्लज़ीन आमनू यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीन वलो कानू उलिल कुर्बा, आयत 113। यानी नहीं लायक या नहीं जायज़ नबी को और ईमान वालों को कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तग़फार करें अगरचे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। 113, कितना कड़ा इम्तिहान था अल्लाह के नबी का। चंद दिन पहले मैं सुन रही थी वाक्या, ये जब अबू तालिब की वफ़ात का वाक्या था, और मैं सोच रही थी कि आज हम तो किसी की नाफरमानी की रस्म को भी नहीं छोड़ पाते, क्या पता, यही सोचते ना, नाराज हो जाएंगे, शादी में ना गए लोग कहेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। अल्लाह के नबी को कितना बड़ा टॉर्चर लगा होगा। और मैं सुन रही थी कि जूं ही अबू तालिब का इंतकाल हुआ, इससे पहले अल्लाह के नबी बेचैन है, चचा कलमा पढ़ लो, मेरे कान में कह दो जो भी बातें आपने सुनी हुई हैं इधर उधर, लेकिन जूं ही उन्होंने जान दी, अल्लाह के नबी वहां से उठ के चले गए, उनके बच्चों से कहा कि इनका कफन दफन कर दें। कितना बड़ा इम्तिहान है, हम होते हाय जमाना की कहेगा, मुंह नहीं दिखाना, कल हम मरेंगे तो हमें नहीं ये देखने आएंगे, हम तो सिर्फ रिवायतों में पड़े हुए लोग हैं। इसीलिए तो इस्लाम का वो लुत्फ, कोई लज्जत, वो स्वीटनेस ऑफ ईमान तो हमें अपने अंदर नजर ही नहीं आती। और सहाबा में ये थी, सहाबा की नमाज, रोजे, तस्बीहों का जिक्र कम है, लेकिन उनके अंदर ये बड़ा ग्रज था कि एक तरफ अल्लाह एक तरफ बंदे, तो मैंने अल्लाह को चूज करना है। तो बहरहाल बड़ा स्ट्रांग टॉपिक है ये, सारे टॉपिक में से जो बात आपको मुझे अपने लिए मिली वो क्या मिली इस पॉइंट में, कि फर्दे जुर्म है, जिस जिसने भी इस्लाम के रास्ते में कोई रुकावट डाली, अल्लाह ने उसके साथ तरीका निपटने का कर दिया। दूसरा टॉपिक, सूरह तौबा में अहले किताब के खिलाफ फर्दे जुर्म और इनके बारे में मुसलमानों को हिदायत है। पहली बात, इस्लामी रियासत के अहले किताब जिम्मियों से जिजिया लिया जाएगा, वरना फिर इनसे जंग की जाएगी। पेंसिल या उंगली जो है ना आयत के साथ रखें, इससे आपका ना इंशाल्लाह तर्जुमे में फहम भी सही होगा। लड़ाई करो उन लोगों से जो नहीं ईमान लाते अल्लाह और यौम आखरत पर, और नहीं वो हराम करार देते उसको जिसको हराम करार दिया अल्लाह और उसके रसूल ने, और नहीं वो कबूल करते दीने हक को उन लोगों में से जो दिए गए किताब। हाँ, सिर्फ एक ही सूरत है इनके साथ मामला करने की, यहाँ तक के दें वो जिजिया अपने हाथ से और वो छोटे बनकर रहें, यानी मुस्लिम रियासत में गैर मुस्लिम रहेगा तो इन शरायत के साथ रहेगा, जिम्मी बन के रहेगा, जिजिया देगा और उसका एक दर्जा दूसरे लोगों से कम होगा। 29 आयत। दूसरे अहले किताब में से यहूद ने हजरत उजैर को और नसारा ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बनाया, दोनों अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हो गए। वकालत यहूद उजैर इब्नुल्लाह वकालत नसार मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका कौलुहुम बिअफवाहिम युज़ाहिउना कौलल्लज़ीना कफरू मिन क़ब्लु क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। और यहूद ने कहा उजैर अल्लाह के बेटे हैं, और कहा नसारा ने कि मसीह इब्नुल्लाह हैं, ये तो उनके मुँहों की बात है और वो मुशाबहत करते हैं कुफार की बातों की जो उनसे पहले थे, मार पड़ी इन पर अल्लाह की, कहाँ ये बहकाए जाते हैं। आयत 30 थी। और अहले किताब ने तौरात और इंजील की आयात को नज़रअंदाज करके अपने उलमा यानी अहबार और अपने दरवेशों यानी रुहबान को, यानी इनके हलाल और हराम को तस्लीम करके अपना रब बना लिया, हालांकि इन्हें एक अल्लाह की इबादत और इताअत का हुक्म दिया गया। ये है शिर्क फित तशरी। कहाँ पढ़ा था शिर्क फित तशरी, किस सूरत में पढ़ा? सूरत अलनाम में। शरीयत साजी का हक सिर्फ अल्लाह ताला के, किसी और को नहीं है। फिर अहले किताब ने तौरात और इंजील की आयात को नज़रअंदाज करके अपने उलमा अहबार और अपने दरवेशों यानी रुहबान को, यानी इनके हलाल और हराम को तस्लीम करके अपना रब बना लिया, हालांकि इन्हें एक अल्लाह की इबादत और इताअत का हुक्म दिया गया। ये शिर्क फित तशरी था। इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। उन्होंने बना लिया अपने अहबार और अपने रुहबान को रब अल्लाह को छोड़कर, और मसीह ने मरियम को भी रब बना लिया, हालांकि नहीं हुक्म दिए गए थे मगर इस बात की कि इबादत करे एक इलाह की, ला इलाहा, जिसके सिवा नहीं कोई, पाक है वो इससे जब वो शिर्क करते हैं। आयत 31। अहले किताब अल्लाह के नूर को अपनी फूकों से बुझाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। युरीद उन्हें युत्फ नूर अल्लाह ही भी अफवाहिम व याब अल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलो करिहल काफिरून। वो इरादा करते हैं कि बुझा दें अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूकों से, जबकि इनकार करते हैं अल्लाह मगर ये कि पूरा करे अपने नूर को, और अगरचे कुफार इस बात को नापसंद करें। 32। अहले किताब के उलमा अहबार और दरवेश यानी रोहबान बातिल तरीके से लोगों का माल खाते हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, सोने चांदी को जमा करने में मशगूल हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, ये दोस्ती होंगे। आयत 34। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयाकुलूना अमवालन्नासि बिलबातिल वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना यक्नज़ूना अज़्ज़हबा वल्फिद्दा वला युन्फिकूनहा फी सबीलिल्लाहि फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। اے لوگوں جی ایمان لائے ہو، بے شک بہت سارے احبار اور رہبان البتہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقوں سے اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کے راستے میں، بس خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی، اللہم اللہ تجعلنا منہم. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے کہ جو دین کے نام پہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ سورت برداشت نہیں ہوتی، خالی پیٹ یہ سورت نہیں پڑھنے والی، بڑی سٹرونگ سورہ ہے جو واقعی ایک ایسے ٹیسٹ کی طرح بندے کو اپنے عمل پہ غور و فکر کرنے والا بناتی ہے. چلیے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.